نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تيسر وتمم بالخير سورة بقرة آيت نمبر 113 سے 121 113 سے 121 آج کا ہمارا یہ سبق ہے پچھلے حصے میں سے آیت 111 میں ایک لفظ آیا تھا برہان تھوڑا سا اس کے اوپر ایک دو جملے بول دیتی ہوں پھر انشاءاللہ اس آیت سے شروع کریں گے اور آج کے سبق کا بھی پہلے آپ کو تھوڑا سا خلاصہ دوں گی اور پھر اس کے بعد آگے چلیں گے لفظ برہان جو ہے نا اس میں نون نہیں ہے روٹ کی براہ اس کا لفظ ہے میں نے اس لیے بول دیا کہ بعض دفعہ لوگ پھر روٹ ورڈ میں گڑبڑ کرتے ہیں تو براہ براہ عربی زبان میں کہتے ہیں خوبصورت عورت کو کسی عورت کا حسن یا اس کی سکن اتنی چمکتی ہوئی ہے کہ جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ پھوٹ پھوٹ پڑنا تو برہان کیا تھی دلیل یعنی اپنی نظیر اپنی مثال آپ ہونا اب آج کے سبق پہ چلتے ہیں پچھلے سبق میں ہم نے اہل کتاب کے پروپیگنڈوں سے بچنے کا طریقہ دیکھا تھا فاف وسفہو اور ساتھ ہی ساتھ اقیم الصلاۃ و آت الزکا آج کے پورے سبق کو اگر میں ایک ٹاپک دے دوں تو شاید ہی آپ کے لیے مناسب ہوگا اور وہ کیا ہے کہ فرقہ واریت مسجدوں کو بے آباد کر دیتی ہے آج کا سبق پڑھتے ہوئے آپ کو بالکل بھی نہیں لگے گا کہ یہ ماضی کی باتیں ہیں آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کا دل مسجدوں میں نہیں لگتا اور دین کی جگہوں پہ نہیں لگتا اور لوگوں کو اب دین سیکھنے کا شوق نہیں رہا اور سو آن اس کی وجہ کیا ہے ہم آج کے سبق میں دیکھیں گے غلط فہمیوں کی وضاحت بھی ہے اور اعتراضات کا جواب بھی ہے اور اس سبق میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ظاہری ریچول میں پڑھنے والی قومیں دین کی روح چھوڑ دیتی ہیں قبلہ کدھر ہے ادھر نہیں ہے ادھر نہیں ہے تھوڑا نہیں 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 غلط ہو گیا پھر پڑھو اچھا وہ میرا ایک بال ٹوٹ گیا تھا حج کے اوپر تو دم دینا ہے اچھا وہ میں نے یہ کر لیا کبھی نہیں لوگ پوچھتے میں نے غیبت کر لی تھی اس کا بھی دم ہے کوئی میں نے جھوٹ بول دیا تھا اس کا نہیں لیکن ریچولس کی جہاں بات آئے گی نا قربانی اچھا فرض ہے سب پہ فرض ہے ایک پہ نہیں سب پہ نہیں اس پہ ہے میرے پہ نہیں تو جب قومیں ظاہری ریچولس کے اوپر ریچول سمجھتے ہیں نا دین کے مظاہر یعنی جو نظر آتے ہیں ان کے اوپر اتنی پکی ہو جائیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بحثے کرنے لگ جائیں لیکن بڑے بڑے مسائل میں خاموش ہوں حتیٰ کہ حرام چیزیں ان کی زندگی میں آ جائیں اور ان کو کوئی فکر اور اس کا غم نہ ہو تو پھر دین کا زوال شروع ہو جاتا ہے وہ ہم اس میں دیکھیں گے اور اس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم مسلمان کس طرح سے اہل کتاب کو خوش کر سکتے ہیں اللہ نے تو کہا نہیں کر سکتے بس ایک ہی طریقہ ہے وہ لیسن کینڈ پہ آئے گا آئیے شروع کرتے ہیں اور ایک ایک چیز کو ہم اپنے آئینے میں دیکھتے جائیں گے کہ آج کے ہم مسلمان کیا کرتے ہیں آیت نمبر 113 ساتھ تھوڑی تھوڑی وضاحت کے ساتھ ہی آپ کو اس کا ترجمہ کرتی ہوں وقالت الیہود اور کہا ہے یہود نے کیا کہا ہے لیست النصارى نہیں ہے نصارى علی شیئن کسی چیز پر یعنی یہود نے کہا ہم نصارہ کو کچھ نہیں سمجھتے یہ مراد ہے ہم ان کو حق پہ نہیں سمجھتے جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نصارہ کس کھیت کی مولی ہیں وی ڈونٹ کنسیڈر دیم ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں مراد یہ ہے کہ وہ حق پہ نہیں ہے یہ مراد ہے جبکہ سیم یہی بات وقالت النصارہ اور کہا نصارہ نے بھی کیا کہا لیست الیہود یہود بھی کچھ نہیں ہے علا شیئن کسی چیز پر یعنی یہود بھی حق پہ نہیں ہے یہ دو جملے دو فرقہ وارانہ گروہوں کے تھے اب آگے لکھئے یہاں جو میں جملہ بولنے سے پہلے لکھئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کمنٹ کیا وہم یتلون الکتاب حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو دیکھو کتاب پڑھنے پڑھانے والوں کا اخلاق تو دیکھو اور ان کا انٹرلیکٹ تو دیکھو ان کو تو دیکھو کہ یہ دوسرے گروہ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں اچھا اب یہاں دو کی بات کے بعد کمنٹ آ گیا نا اب آگے پھر چلی کذالک اسی طرح کس طرح یہ پیچھے جو قالت الیہود لیست النصارى یعنی جو جملہ پہلے نصارى اور پھر اس کے بعد یہود کی سینس میں آ گیا سیم اسی طرح قال الذین کہا تھا ان لوگوں نے لا یعلمون جو نہیں جانتے لاعلم لوگ، لکھی اس کے نیچے مراد اہل مکہ، امی تھے نا، اہل کتاب ان کو ان پڑھ کہتے تھے، خود بہت پڑھے لکھے تھے، یہود جو تھے وہ ان کا بہت روب تھا، بڑی دھاک تھی ان کے اندر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو پڑھے لکھے لوگوں کی تم نے باتیں سنی ہے نا، تو اب ذرا ان پڑھوں کی بھی سن لو. کیا کہا تھا؟ مثل قولہم، انہی جیسی بات، یعنی جو بات یہ کر رہے ہیں ایسی ہی بات انہوں نے بھی کی تھی. چلیے اب یہاں تک دیکھیے، تو تین گروہوں کے دعوے ہیں، میں دہرا دیتی ہوں. نصارہ کا دعویٰ ہے کہ یہود حق پہ نہیں ہے، یہود کا دعویٰ ہے نصارہ حق پہ نہیں ہے، اور اہل مکہ یا مشرکین مکہ کا دعویٰ یہ ہے کہ یہود اور نصارہ دونوں ہی حق پہ نہیں ہیں. تو اب ہے کون؟ فَاللَّهُ يَحْكُمُ، بس اللہ ہی فیصلہ کرے گا، بَيْنَهُمْ ان کے درمیان. کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن. کس بات کا فیصلہ؟ فیما، اس معاملے میں جو، کانو فیہی، تھے وہ، پھر کانا آ گیا مسلسل، پاس کنٹینیوس ٹینس، یہ سارے ہی کرتے رہتے ہیں، یہ کوئی ایک دفعہ نہیں کہہ کے یہ بات چھوڑ دیتے. ان کی ساری بات کا خلاصہ ہی یہ ہوتا ہے، فی ہی، اس میں، یختلفون، وہ اختلاف کرتے. اب آپ کو بات ایک سٹریچ میں کیا سمجھ آئی؟ کہ یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کسی بنیاد پر نہیں، نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کسی بنیاد پر نہیں، حالانکہ یہ سب ایک ہی آسمانی کتاب پڑھتے ہیں. اسی طرح وہ لوگ بھی کہنے لگے کہ جن کے پاس علم نہیں تھا تو بس اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. تھوڑی سی لفظوں پہ توجہ کیجئے گا. لفظ دیکھیے، اگر آپ میں ہائی لائٹ کروں نا، واہ اور وہ جب بھی آتی ہے نا کسی لفظ میں تو اس کو پیچھے سے جوڑتی ہے. پیچھے ہم نے یہود اور نصارہ کے کچھ عقائد کو دیکھا تھا نا، تو اب واہ اور، یعنی اصل فیس ان کا یہ ہے، لیکن اس کے باوجود، جس کو ہم کہتے ہیں نا، اور باتیں تو تم بڑی بڑی کرتے ہو، اور لفظ میں پیچھے سے کچھ تعلق ہوتا ہے. اب تھوڑا سا آپ توجہ کیجئے کہ لفظ قالت مؤنث میں آیا ہے. عربی زبان میں جیسے اردو میں ہم بولتے ہیں نا، وہ بولتی ہے اور وہ بولتا ہے، وہ کہتا ہے وہ کہتی ہے. مرد کے ساتھ ہم کہتا کہیں گے، عورت کے ساتھ ہم کہتی کہتے ہیں. تو عربی زبان میں مذکر کیا ہوتا ہے؟ قالا، اس ایک نے کہا، اور اگر ایک عورت کہے تو ہم کہیں گے قالت. یہاں کیا لفظ آیا؟ قالت، دونوں کے ساتھ. آپ نوٹ کر رہے ہیں اگر، تو یہود اور نصارہ دونوں کے ساتھ لفظ قالت آیا، جبکہ آگے اگر آپ دیکھیں تو الذین لا یعلمون کے ساتھ قالا آیا. فرق کیا؟ بات سمجھ گئے آپ لوگ؟ بس اس میں آپ کو میں گرامر میں نہیں ڈالتی، لیکن آپ کو بتاؤں کہ اس کی وجہ ہے، یہ مؤنث ہے، یہود اور نصارہ لفظ مؤنث ہے، فیمیل. اب دیکھنے میں تم یہود لفظ مذکر لگتا ہے نا، لیکن یہاں گرامر کی بات ہے. یہود کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تعلق جوڑنے والے، مگر یہودا سے نسبت جوڑنے والے. آج ایک بات سمجھ لیجئے گا، سارے اہل کتاب، سارے بنی اسرائیل خود کو یہودی نہیں کہتے تھے. پیچھے آپ نے ہسٹری پڑھی نا، حضرت یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ 10 اور 2 12. 12 میں سے سب سے چھوٹے کا کیا نام تھا؟ بنجامین. سب سے بڑے کا کیا نام تھا؟ یہودا. تو یہودی صرف ایک سیٹ کا نام ہے، آج ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا، لیکن سارے جیوز، جس کو جیوز اور یہودی تو ایک ہی بات ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خاص طور پہ یہودا سے نسبت جوڑی تھی. موسٹلی لوگ یہی ہیں، لیکن کہہ لیجئے کہ یہ ایک فرقہ وارانہ نام ہے. لیست کا لفظ آپ کے لیے پہلی دفعہ آیا. ابھی تک آپ نے لفظ نا کے لیے کیا لفظ پڑھے ہیں؟ لا، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی. پھر فائل لم تفلو، لم اور لن تفلو پڑھا تھا، یاد ہے؟ شدت تھی، جیسے نو اور نیور بتایا تھا. آج یہ لفظ لیسا نیا ہے. دیکھیں عربی زبان میں یہ دیکھنے میں، اس کے اوپر اتنے لوگ غلطی کرتے ہیں. اگر میں کسی تھوڑے سے گرامر پڑھے والے سے پوچھوں نا کہ پہلے یہ بتائیے کہ یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، تو یہی غلطی کھا لیں گے. تین چیزیں ہوتی ہیں ہر لفظ میں، یا کام کرنے والا ہوتا ہے، یا جس پہ کام کیا جا رہا ہوتا ہے، یا کام خود ہوتا ہے. بہت سارے لوگ اس کو فعل کہتے ہیں، حالانکہ یہ حرف ہے. اس کو کہتے ہیں حرف ناقصہ، نقص ہوتا ہے ایک. حروف ناقصہ کیا ہوتے ہیں؟ بیسیکلی یہ فعل کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے. تھوڑی سی آپ کے انٹرسٹ کے لیے، تاکہ آپ کے دل میں دعا پیدا ہو کہ ہم گرامر پڑھیں. آپ دیکھیے کہ ہمیشہ ہم کہتے ہیں نا، یا فعل ماضی ہوتا ہے یا فعل مضارع ہوتا ہے. ठीक है ना। तो फेल माजी और मुजारे आम बात है, अरबी जुबान में दो होते हैं और इंग्लिश में कितने होते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ऐसे ही है ना। अरबी जुबान में दो होते हैं, या पास्ट होता है, माजी होता है, या मुजारे होता है। फेले नाकिसा जो होते हैं ना, बेसिकली इसको फेले नाकिसा ही बोलेंगे, इसमें सिर्फ माजी होता है, इसमें फ्यूचर नहीं आएगा। और इसकी पूरी किरदार ना पढ़ेंगे, लईसा लईसु लईसत, और ये सारे कुरान, लस्तुम अला शईइन कुरान का लफ्ज है, लस्तुम का लफ्ज आएगा लईसु, तो यहां बस लईसत शिद्दत के लिए कि तुम कुछ भी नहीं हो। अब इस आयत को अगर ऐसे पढ़ते, वकालतिल यहूदु ला नसारा ला शईइन, बहुत खूबसूरत नहीं लगती। या हम पढ़ते हैं लन नसारा ला शईइन, नहीं लम नसारा नहीं, लईसत, यानी जिसको आप कहते हैं ना ये हो ही नहीं सकता, जैसे वो दांत पीसते हुए की फीलिंग अगर आप लें एक्सप्रेशन से, यानी उनको गुस्सा आ रहा है यहूद पर, ला लफ्ज भी नहीं उनको अच्छा लग रहा कि उनके जज्बात का इजहार हो, बल्कि लईसत है ही नहीं, चिढ़ने वाला अंदाज है, यानी इसमें एक चिढ़ पाई जा रही है, क्या नसारा किसी चीज पे नहीं। नसारा कौन है, नासरा बस्ती से या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से निस्बत रखने वाले लोग हैं। अब सवाल पैदा होता है कि ये सब कब क्यों कहां और किसने कहा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में थे, आपके इर्द गिर्द तो यहूद रहते ही थे, पिछले आयात में कई बार ये जिक्र किया। मदीना से थोड़ा सा दूर एक बस्ती थी जिसका नाम था नजरान, वहां रहते थे क्रिश्चियन नसरानी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही दौर में एक दफा वहां से कुछ लोग आ गए मदीना में। जब वो मदीना में आए तो उनकी मुलाकात हो गई यहूद से, इमेजिनेशन में ला रहे हैं आप चीजें। जब वहां दोनों गिरोहों का आपस में आमना सामना हुआ तो दोनों की बहस छिड़ गई, इतना लड़ाई शुरू हुई कि इन आयतों में अल्लाह ताला ने उसका रद्द कर दिया कि ये लोग इस तरह की बातें कर कर एक दूसरे को कंडेम कर रहे हैं, एक दूसरे को कुछ नहीं समझते। सवाल पैदा होता है कि क्यों ये जुमला कोई कौम क्यों बोलती है। अब हम इसको ओवरऑल देखते हैं कि ये जुमला के हर गिरोह को दूसरा गिरोह बातिल पे दिखता है और अपना आप हक पे दिखता है, तो वजह क्या है। नंबर एक, खुदपरस्ती। आप ये सारे रवैये आज के रुकू में से निकालते रहेंगे ना आज के सबक से, तो आपको आज की भी बहुत सारी मजबूरियों की वजह से, नंबर एक खुदपरस्ती, खुद को पूछना, सेल्फ वर्शिप इंग्लिश में कह ले, मेरे जैसा कौन, हम जैसा कौन। दूसरी चीज जिद, बगी, जिद है जी। जैसे आप देखिए कि आप माँ उसको 10 चीजें दिखाएगी ना तो बच्चा कहेगा वही पुरानी कपड़े पहनने हैं, जिद में आ गया ना, मैंने वही खाना है जो भाई खा चुका है, जिद होती है। जब बंदा खुद परस्ती और जिद में पहुंच जाता है ना तो उसको अपने सिवा कोई हक पे नजर नहीं आता, और इसमें उन्होंने दूसरे को गुमराह और काफिर भी करार दिया। एक होता है आप कहते हैं कि मैं हक पे हूं, दूसरे हुए तो होंगे, ये भी काबिले बर्दाश्त बात हो सकती है, बट जब ये कहना कि मैं सब कुछ और अगला कुछ नहीं, तो ये बात कभी दुरुस्त नहीं हुई। कुछ तो कसूर आपका भी होगा ही ना, जब लड़ाई घर में भड़ी तो मान लीजिए 98% फरीक के मुखालिफ का ही कसूर था, लेकिन 2% आपका होगा। फिर इसी तरह इसकी तीसरी वजह होती है बुजुर्गों से निस्बत हक से ज्यादा होना, यानी यहूद ने नबियों और बुजुर्गों से ताल्लुक को हक परस्ती का मेयार बना लिया, यानी हमारे खानदान में कितने बुजुर्ग गुजरे हैं, हमारे खानदान में या हमारे मसलक में कितने बड़े बड़े आलिम गुजरे हैं। पिछले दौर में कह लें तो यहूद ने क्या कहा, हमारे पास इतने नबी आए, पीछे आपको होता था 4,000 नबी बनी इसराइल में आ गए, तो यहूद के जेन से ये निकल चुकी थी बात कि चलो एक तो बनी इस्माइल को भी मिल जाए। मजे की बात है कि आप जब वो प्रॉफिट ट्री देखते हैं तो उसमें आपको सारे छोटे छोटे फूल सारे बनी इसराइल के दिख रहे होते हैं, एक नीचे से वो इस्माइल से डंडी उठती है ऊपर, और ऊपर जाके एक सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे। तो कोई कह दे कि तुम्हारे पास इतने जो हैं तो एक बनी इस्माइल को भी दे दो, बट ये चीज बर्दाश्त नहीं होती। और याद रखिए यहूद ने ये बातें क्यों एक दूसरे पे कही थी, यहूद के नजदीक नसारा मुर्तद है। क्यों, बहुत जुमला गौर से सुनिएगा कि यहूद का ये जुमला कि नसारा हक पे नहीं है, वजह क्या थी, कहते थे नऊज़ु बिल्ला वलद ज़िना बच्चे को नबी बना लिए इन्होंने, हजरत ईसा के लिए वो यही लफ्ज बोलते हैं ना कि ये कुंवारी मरियम से नहीं बल्कि ये यूसुफ नज्जार के जरिए से ये बच्चा पैदा हुआ, और दूसरा उनको एतराज़ हज़रत ईसा पे क्या था कि हज़रत ईसा ने यहूद के उलमा की जो की हुई खियानतें थी ना किताबों में वो खोल दी हैं। हत्ता कि आपको पता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो कत्ल की कोशिश की गई सूरत माईदा में आप बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे तो यहूद खुद कहते हैं यस इन्ना कतलनल मसीहा, हमने की है कत्ल उसको। तो जिस शख्स को वो कत्ल कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्या उसकी कौम को वो हक पे समझेंगे? ठीक है, सवाल पैदा होता है कि नसारा ने क्यों यहूद को कहा कि तुम हक पे नहीं हो, क्रिश्चियंस ने क्यों कहा कि ज्यूस हक पे नहीं है? तो उसकी वजह वो कहते हैं कि अल्लाह के अकलौते बेटे को इन्होंने कत्ल करने की कोशिश की। बात अपने हिसाब से ये ठीक कह रहे हैं लेकिन गलत दोनों की है, बात समझ गए? ना उनका दावा ठीक है ना इनका दावा ठीक है, अब ये दोनों बिगड़ गए। सवाल पैदा होता है अल्लाह जीना ला या लमून ने ये बात क्यों कह दी, अरबों ने क्या कहा, उनको क्या एतराज़ था? अरब लोग खाना काबा की नस्बत से अपने आप को बहुत ऊंचा समझते थे, कहते थे हम काबे के मुजावर हैं, हम हाजियों को पानी पिलाते हैं, सत्तू घोलते हैं, हम सफाइयां करते हैं, हम चाबी रखते हैं, तो ये चीज़ें जिसके पास नहीं वो हक पे कैसे हो सकता है? तो लिहाजा यहूद और नसारा तो कुछ भी नहीं है। हुआ क्या कि इन्होंने इसी चीज़ों को लेकर लड़ाई झगड़ा कर दिया। और याद रखिएगा कि ईसाइयों ने अपने आप से ये बात गढ़ ली थी कि हम हक पे हैं, क्यों? कहते थे अल्लाह ने अपना इकलौता बेटा हमारे पास भेजा। ज्यूस क्यों कहते थे हम हक पे हैं? कहते थे सबसे ज्यादा नबी आए हैं। अल्लाह ताला कहते हैं किताब पढ़ने पढ़ाने वालों का ये मिजाज नहीं होना चाहिए। इमाम फखरुद्दीन राजी बहुत बड़े मुफसर हैं, अरबी तफसीर है, कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत भी बाइन ही इसी बीमारी में आज मुबतला हो गई कि एक जमात दूसरी जमात की तकफीर करती है यानी काफिर कहती है उसको, और हालांकि कुरान सभी पढ़ते हैं। आज भी ये उनका जाके देख लीजिए, तहसीरुर रहमान एक तफसीर है बहुत अच्छी मुख्तसर सी है, उसमें जाके पेज 64 पे देख लें। तो याद रखिएगा कि दावा किसी का भी ठीक नहीं है। अब सवाल पैदा होता है आखिरी हिस्सा ज़रा आयत का देखिएगा, फल्लाहु याहकुमु बैनहुम, फिर अल्लाह ही फैसले करेगा उनके दरमियान। इस जुमले को बहुत मिसअंडरस्टूड किया लोगों ने। आज कुछ लोग कहने लग गए कि तुम्हें क्या पता यहूदी ठीक हो, तुम्हें क्या पता नसारे ठीक हो, तुम्हें क्या पता बेचारे भोले भाले मुशरिकीन मक्का ही सही हो, और तुम कैसे कह सकते हो कि हम मुसलमान ठीक हैं? और दलील में क्या कहते हैं, देखो फल्लाहु याहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामा, यानी वो धोखा क्या देते हैं कि आज किसी को नहीं पता कौन सा ठीक है, तुम किसी को गलत ना कहो, बस सबको मिलाकर एक दीन बना दो। हालांकि इससे मुराद ये नहीं है वल्लाहु याहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन पेपर्स मिलने हैं, बट पेपर्स का रिजल्ट क्या है जो आज लिखा हुआ है? अगर आज इस दुनिया में ये पता ही नहीं है कि कौन सा दीन सच्चा है, सवाल पैदा होता है, इस्लाम पे बहुत बड़ी चोट है आज के दौर में। और वल्ला ही हमारे अपने बच्चे पूछते हैं, मामा आपको क्या पता है कि इस्लाम ठीक है? शायद क्रिश्चियंस ठीक हो, शायद बाइबल ठीक हो, आप क्यों कहती हैं कुरान ठीक है? और डाउट्स और शुबे और गलतफहमियां पैदा की गई हैं। अब सवाल पैदा होता है दुनिया में अब नहीं पता कि कौन ठीक है, दुनिया में भी पता है। एक अच्छे उस्ताद को पहले से ही पता होता है किसने पूरे नंबर लेने हैं, किसने आधे लेने हैं, किसके थोड़े भी नहीं आने। क्यों? उसको उसके रोजानात, उसकी काबिलियतें, उस बेचारे के हालात, सरकमस्टांसिस को देख के नजर आ रहा होता है। अगर ये बात होती तो फिर आप बताइए कि कुरान की आयत सूरत अल-अनाम आयत 53 लिखें इसका जवाब है। आपसे बच्चे आपके पूछेंगे ना, देखें कुरान में आया हुआ है कि पता नहीं कौन ठीक है, हमें क्या पता है? तो लिखिए सूरत अल-अनाम, अल्लाह के नबी सल्लम की तरफ निस्बत है, वन हाजा सिराती मुस्तकीमा, और ये है मेरा सीधा रास्ता, फत्तबेउहु इसकी पैरवी करो, वला तत्तबियु सुबुल भटके हुए रस्तों पे ना चलो, फतफर्रक बिकुम अन सबीलिही वो तुम्हें बहुत सारे मुख्तलिफ रास्तों पे ले जाएंगी। यानी एक से जायद कुरान की आयतें, बल्कि मेरा ले 20 आयतें मौजूद हैं कुरान पाक में। वह मैं यब तगी गैर अल इस्लामी दीन, आयत नंबर 53 थी सूरत अल अनाम की, ठीक है। यानी कुरान पाक में ही ये बात बारहा लिखी है कि अल्लाह का सीधा रास्ता कौन सा है। वह मैं यब तगी गैर अल इस्लामी दीन, जो इस्लाम के सिवा कोई दीन लेकर आएगा, फलें युकबला मिन हो, आखरत में उसे कबूल नहीं किया जाएगा। इसी तरह इस पे एक हदीस नोट करें, सही मुस्लिम की है, 6228 नंबर है, जैद बिन अरकम की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया आगाह रहो मैं तुम्हारे पास दो बहुत ही भारी और अजीम चीजें छोड़े जा रहा हूं। इनमें से एक अल्लाह तला की किताब है, जो अल्लाह तला की रस्सी है। जो इसकी इत्तबा करेगा वो हिदायत पर रहेगा, और जो इसे छोड़ देगा वो गुमराह होगा। तो याद रखिए कि लोग इस किताब से जब टूटते हैं तो फिर वो इसी तरह की बातें करते हैं। अल्लाह ताला कयामत के दिन हमें बताएगा, सारी दुनिया के सामने खोलेगा और इनको बताएगा जो सारी बातें जानते हुए भी गलत काम करते थे, लेकिन अल्लाह को सब कुछ पता आज भी है और अल्लाह ने अपने नबी के जरिए ये बात सबने सबके रख दी। अब सवाल पैदा होता है कि ये जो बात है क्या ये कहना चाहिए? मिसाल है कि आपके इधर खीवी है, ठीक है, और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो रीमा थाउजेंड है। खीवी ने भी एक दुकान से जाई हुई है, अपनी चीजें प्रोडक्ट कुछ मुश्तरक है, रीमा थाउजेंड पे जाएंगे। खीवी क्या कर सकता है ज्यादा से ज्यादा, इसको क्या करना चाहिए? अपनी चीजों को पब्लिश करें, उसके रिक्लामे बनाए, उसके फ्लायर बनाए के थिल बूथ्स दे, ये सस्ती बाय वन गेट वन टू, बहुत अच्छी बात है। आप कहते वाह इतनी अच्छी चीजें इतनी सस्ती मिल रही है, मैं चली जाऊं। लेकिन बिलफर्ज आप खीवी में दाखिल हो, दरवाजे पे एक बंदा हो, इधर आओ जी मैं तुम्हें जरा सा बताऊं, अंदर आओ देखो क्या कुछ है। अब वहां पता तुम्हें क्या है, वो रीमा वाले देखो इतना महंगा फ्रूट बेच रहे हैं। अमेरिका में एक आध दो जगह ऐसा होता है, जैसे एक स्टाइल है वहां के स्टोर्स हैं, एची भी बहुत मशहूर है मतलब टेक्सास में जो, और दूसरा जो वो फिएस्टा है। तो आप जब एची बी में जाते हैं ना तो कीमत लिखी होती है ना, तो नीचे छोटी सी लिखी होती है कि हमने तो ये $2.30 की लगाई है ना, और यानी फिएस्टा पे ये इस वक्त 250 की बिक रही है। और साथ नीचे उन्होंने बारीक लाइन में लिखा था चेक्ड एट दिस टाइम, कि हमने ये जो फिएस्टा की कीमत जो आपको बताई है ना, ये हमने उस वक्त जाके चेक की थी, यानी पता नहीं अब तुम जाओ तो उन्होंने बदल दिया तो हमें नहीं पता। ये एक खास वो हमने सामने उनके स्टोर से उनका चलता होगा, लेकिन आप देखिए कि अच्छा तो नहीं लगता ना। आप अपनी खूबियां बयान करें, आप स्कूल में आते हैं आपको रिसेप्शन पे क्या मिलना चाहिए कि स्कूल में क्या हो रहा है, बच्चों की क्लासें बड़ों की हैं छोटी हैं बड़ी हैं, जो भी आपके अंदर हैसियत है आप अपनी चीज़ों को एडवर्टाइज कर दें। लेकिन आप यहाँ आकर यहाँ सात लोगों को ये बताने लग जाएं कि वो चर्च में क्या कुछ हो रहा है या फलाह मस्जिद में क्या, यानी ऑपोजिट बोले, तो फायदा क्या होगा कि नुकसान होगा? नुकसान पता क्या होगा आपको, आप लोगों को खुद ही सस्पेंस डाल देंगे। कोई जार में से एक कहेगा अच्छा रीमा थोजन नाम का एक और स्टोर भी है इधर, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो समझा कीवी है, मैं तो 4 माह से इस घर में आके रह रहा हूं, मुझे तो कीवी पता है। फर्स्ट आपने खुद अलर्ट दे दिया। फिर कोई बंदे होते हैं जो खुद देखना चाहते हैं, कहते देख के आते हैं। जब वो रीमा पे गया उसको 2-4 दफा में अंदाजा हो जाएगा आप क्या सस्ता बेचते हैं आप क्या महंगा, आपने खुद ही रास्ता दिखा दिया। जब ये मिजाज दीनदार तबके का हो जाए तो इसको बद अखलाकी कहते हैं। आज अफसोस की बात है, आप देखिए कि बहुत सारे लोग हैं जो आज के दौर में दीन के वो मिंबर, ये जहां मैं भी बैठी हूं, ये भी तो अल्लाह के नबी की बात को आगे पहुंचाने के ना, इस जगह पे आके मुझे आपको क्या पढ़ाना चाहिए। जैसे इस वक्त अब मैं अपनी मिसाल दे के आपको यह समझाती हूँ, आप घर से क्या सीखने आए? आप कुरान पाक अल्लाह का कलाम अपनी जुबान में उसको हल्का फुल्का सा वाजे हो जाए, आपको अमल की बातें मिल जाए, आपके डाउट्स क्लियर हो जाए, बहुत हुआ तो कोई सवाल जवाब है तो वो जहन में आ जाए। मैं यहाँ आकर आपको ये आयतें पढ़ाने की बजाय इस शहर में कौन क्या कर रहा है, किधर क्या चलाकियाँ हो रही हैं, किधर क्या चालें चली जा रही हैं, क्या हो रहा है वो बताने लग जाऊँ, फ़ायदा क्या होगा? अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो मेंबर जो अल्लाह के रसूल की अमानत होते हैं, आज उन जगहों पे फ़िरका वारियत की बातें, इख्तलाफी बातें। अगर कोई आपसे सवाल करता है ना, अपने समझने के लिए, को सीखने के लिए, को मशवरा करता है, कुछ ज़ाती किसी का कंसर्न है, आप उसको इल्म की बुनियाद पे दूध का दूध और पानी का पानी अलग दिखा दें। लेकिन ये मिजाज नहीं है कि आप एक मेंबर पे जुमे के खुतबे में, मैंने अपने कानों से ऐसे खुतबे सुने, मैं आप रिकॉर्डेड स्पीचेस सुनकर देख लीजिए, बास लोगों का तो स्टाइल ही सिर्फ ये होता है कि प्रवोक करने वाला। देखिए इख्तलाफ हो सकता है, यहाँ एक लफ्ज इख्तलाफ को भी थोड़ा सा समझाना चाहूंगी, फल्लाहु यहकुमु बैनहुम, यहकुमु का जो लफ्ज है ना हुक्म से है, इसमें अथॉरिटी होती है, जैसे हुकूमत का लफ्ज भी इसी से है। अरबी जुबान में बात मनवाने के लिए बहुत से लफ्ज हैं, यहकुमु में मुराद है कि अल्लाह इस बात को कंफर्म कराएगा किस चीज में, फी मकान फी के यख्तलिफून, लफ्ज यख्तलिफून को अपने पास लिखे इख्तलाफ की सूरत में। ये देखिए ये दो पेन है, आप इमेजिन कीजिए कि ये गाड़ी है सुर्ख रंग की और ये एक सिल्वर रंग की गाड़ी है, ये गाड़ी साउथ से नॉर्थ जा रही है, ये गाड़ी इस तरफ जा रही है, जबकि इस गाड़ी ने इधर जाना है, यानी एयरपोर्ट जा रही है तो ये सिटी जा रही है। अब ये नीचे रोड पे आपको ऐसी 20 गाड़ियां दिखती है ना, 1 मिनट पे आप खड़े हो तो आप गाड़ियां गिने, 20 से ज्यादा गाड़ियां गुजरेंगी, ठीक है। ये जो लफ्ज है ना, इसको क्या कहते हैं, ये एक दूसरे के मुखालिफ है, लफ्ज के मुखालिफ, ऑपोजिट। आपका रुख सिटी की तरफ है, आपका एयरपोर्ट की तरफ है, कोई हर्ज नहीं, ये दुनिया का असूल है। आपकी आंखें देख रही हैं, आपके कान सुन रहे हैं, मुखालिफ है। आंखें के मैं भी सुनूंगी, कान के मैं देखूंगा, गड़बड़ होगी ना। ये सारा दिन गाड़ियां यूं चलती जाती आती जाती, इट्स फाइन। लेकिन अगर इधर वाली गाड़ी इसको आता दे करके, हाँ जिधर मैं जा रही हूँ ये उधर क्यों नहीं जा रही, और जाके इसको टक्कर मार दे, ये इख्तलाफ। अब जुमला बोलूंगी, आप लिखिएगा। किसी चीज के मुखालिफ होना और उससे मुख्तलिफ होना, इसमें बहुत फर्क है।